ये आकाशवाणी दिल्ली है। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैप 2 लागू किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 प्रदान किए। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में BSNL के नए प्रतीक चिन्ह और 7 नई सेवाओं का उद्घाटन किया। दिल्ली विश्वविद्यालय की संस्कृति परिषद की अंतर महाविद्यालय ललित कला प्रतियोगिता संपन्न और दिल्ली के स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर में दीपावली, गोवर्धन पूजा और अन्नकूट उत्सव के आयोजन की तैयारियां शुरू हुई। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। दिल्ली और NCR क्षेत्र में वायु की खराब गुणवत्ता को देखते हुए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का दूसरा चरण ग्रेप 2 आज से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लागू हो गया है। ये निर्णय नई दिल्ली में NCR और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की उप समिति की बैठक के दौरान लिया गया। समिति ने लोगों से अक्टूबर से जनवरी के दौरान धूल उड़ाने वाली निर्माण गतिविधियों से बचने का आग्रह किया है। समिति ने ठोस कचरा और जैव ईंधन को खुले में जलाने से बचने के लिए भी कहा है। इस योजना के अंतर्गत एजेंसी द्वारा निर्धारित सड़कों पर नियमित आधार पर यांत्रिक और सूखी सफाई की जाएगी। इसके अलावा इन सड़कों पर प्रतिदिन पानी का छिड़काव भी किया जाएगा। इससे निर्माण और विध्वंस स्थलों पर धूल नियंत्रण उपायों को सख्ती से लागू करने के लिए निरीक्षण तेज होगा। समिति ने NCR में सभी चिन्हित हॉटस्पॉट में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए केंद्रित और लक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है। इसमें वैकल्पिक बिजली उत्पादन सेटों और उपकरणों के उपयोग को कम करने के लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है।
धूल नियंत्रण उपायों को सख्ती से लागू कराने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के चिन्हित संवेदनशील स्थानों पर वायु प्रदूषण को कम करने के लिए लक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में श्वसन विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अमित सूरी ने बरती जाने वाली सावधानियों के विषय में बताया।
अगर बहुत जरूरी है तो बाहर निकलिए, और निकलना है तो N95 मास्क जरूर पहने। दूसरा, सिंपल सर्जिकल मास्क, कपड़े के मास्क पॉल्यूशन से नहीं बचाएंगे। सबसे ज्यादा रिस्क वाले एज ग्रुप से हैं, जैसे बहुत छोटे बच्चे, 5 साल से कम, बुजुर्ग 60 या 70 साल के बुजुर्ग, या जिनको पहले से ही सांस की या हार्ट प्रॉब्लम्स हैं। इनमें देखा गया कि प्रदूषण के कारण जो होने वाले साइड इफेक्ट्स हैं ज्यादा देखे जाते हैं। कुछ सावधानियां हमें बहुत जरूरी है बरतनी, जैसे अनावश्यक बाहर नहीं निकले, घर के खिड़की दरवाजे बिल्कुल नहीं खोले, सार्वजनिक परिवहन का यूज करिए।
इस बीच दिल्ली सरकार ने भी नागरिकों से अपील की है कि वे रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ के तहत सड़क पर लाल बत्ती होने पर अपने वाहन बंद कर दें। भानु प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ग्रेप 2 नियमों को शहर में बेहतर ढंग से लागू करने के लिए आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दिल्ली सचिवालय में बैठक की। उन्होंने कहा कि वायु गुणवत्ता सूचकांक के 300 से अधिक पहुंचने के बाद पूरे उत्तर भारत में ग्रेप 2 नियम लागू किए गए हैं।
QI 300 के आगे बढ़ रहा है, इसलिए अब पूरे उत्तर भारत में NCR में ग्रेप 2 के नियम जो है वो आज से लागू कर दिए गए हैं, जिसका मकसद यह है कि चूंकि मौसम जब विपरीत हो रहा है, पोल्यूटेंट हैं जो प्रदूषण के कण हैं वो वायुमंडल में नहीं जा रहे हैं, तो कैसे जो सोर्सेज हैं उनको कंट्रोल किया जाए, और उसके लिए ग्रेप 1 से ग्रेप 2 में मुख्य तौर पर 5 नए पालकदमियों को जो है वो शामिल किया गया है।
श्री गोपाल राय ने बताया कि इस पहल के अंतर्गत डीजल जनरेटर विनियमित किए जाएंगे, मेट्रो और बसों की आवृत्ति और पार्किंग लागत बढ़ाई जाएगी ताकि लोग व्यक्तिगत वाहनों की जगह सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में खराब होती वायु गुणवत्ता के बीच दिल्ली सरकार ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकार से राष्ट्रीय राजधानी में डीजल बसों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने पर विचार करने का आग्रह किया है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज इन राज्यों के परिवहन मंत्रियों को पत्र लिखकर कहा कि डीजल बसें हानिकारक प्रदूषक उत्सर्जित करती हैं, जो श्वसन संबंधी बीमारियों और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती हैं। पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के दूसरे चरण के अंतर्गत 11 सूत्रीय कार्य योजना लागू की गई है। ये निर्णय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की उप समिति की बैठक में लिया गया। समिति ने लोगों से अक्टूबर से जनवरी तक निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियां बंद करने का आग्रह किया। दिल्ली NCR में प्रभावित क्षेत्रों में प्रतिदिन पानी का छिड़काव किया जाएगा। एजेंसियां यातायात के सुचारू प्रवाह के लिए भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पर्याप्त कर्मियों को तैनात करेंगी। समिति ने सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसों के आवागमन को बढ़ाने तथा लोगों से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने का आग्रह किया है। उधर दिल्ली भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आज दिल्ली सरकार पर प्रदूषण के खिलाफ गंभीरता न दिखाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने कभी प्रदूषण को समस्या माना ही नहीं है। श्री सचदेवा ने सरकार की रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ऐसी योजनाओं के अंतर्गत केवल कार्यक्रम प्रबंधन करती है और प्रदूषण के मुख्य कारणों पर ध्यान नहीं देती। श्री सचदेवा ने सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि कोई भी सजग सरकार इस मुद्दे पर 12 महीने काम करती है।
जिम्मेदार कौन है इसका? जिम्मेदार 10 साल की वो सरकार की जिसने पोल्यूशन को कभी कोई समस्या माना ही नहीं। इन्होंने पोल्यूशन को एक इवेंट मैनेजमेंट का खेल बनाकर रख दिया। जब जब ये मौसम आता है सर्दियों का, ये इंजन ऑफ इंजन बंद कर होर्डिंग निकालेंगे, अपने लोगों को खड़ा करेंगे, लेकिन पोल्यूशन के मेन कारणों पे काम नहीं करते। पोल्यूशन एक दिन की समस्या नहीं है, ये 12 महीने इस पे लगातार काम करने की जरूरत है। और कोई भी अगर सजग सरकार होती तो 12 महीने लगातार इस पे काम करती और पोल्यूशन का हल निकालती।
इस बीच दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने भी दिल्ली सरकार पर वायु प्रदूषण को रोकने में विफल रहने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों से सरकार द्वारा करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी राजधानी के प्रदूषण स्तर में कोई कमी नहीं आई है। श्री यादव ने कहा कि आम आदमी पार्टी राजनीति करने के बजाय प्रदूषण रोकथाम के लिए सकारात्मक काम करे। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने यमुना नदी के बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार की आलोचना की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सक्सेना ने आज इस विषय पर सवाल उठाते हुए कहा कि दिल्ली सरकार को दोषारोपण करने से बचना चाहिए और यमुना की इस स्थिति से दिल्ली वासियों विशेषकर छठ उपासकों को निजात दिलाने के लिए काम करना चाहिए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 प्रदान किए। ये पुरस्कार 9 श्रेणियों में 38 विजेताओं को दिए गए। इनमें सर्वश्रेष्ठ राज्य, जिला, ग्राम पंचायत, शहरी स्थानीय निकाय, सर्वश्रेष्ठ जल उपयोगकर्ता संघ और सर्वश्रेष्ठ नागरिक समुदाय शामिल हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि जल जीवन मिशन के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।
अमृत 2.0 योजना के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक घर में नल से जल की आपूर्ति करने पर कार्य किया जा रहा है। 2019 में सरकार द्वारा जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया गया है। इस मिशन की शुरुआत के समय केवल 17% ग्रामीण परिवार के पास टैप वाटर की सुविधा थी। आज 78% से अधिक परिवारों के पास नल से जल पहुंचा दिया गया है।
सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार ओडिशा को, द्वितीय पुरस्कार उत्तर प्रदेश को और तृतीय पुरस्कार संयुक्त रूप से गुजरात और पुदुचेरी को दिया गया। विजेताओं को प्रशस्ति पत्र, एक ट्रॉफी तथा नकद धनराशि दी गई। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL द्वारा 4G नेटवर्क की शुरुआत के बाद से ग्राहकों की संख्या पिछले 6 महीनों में 75 लाख से बढ़कर 1,80,00,000 हो गई है। नई दिल्ली में आज BSNL के नए प्रतीक चिन्ह और 7 नई सेवाओं का उद्घाटन करते हुए श्री सिंधिया ने कहा कि भारत विश्व के उन 6 देशों में शामिल हो गया है जिन्होंने अपना 4G नेटवर्क विकसित किया है और जल्द ही इसे 5G नेटवर्क में परिवर्तित किया जाएगा। BSNL का नया प्रतीक चिन्ह विकास, पहुंच और विश्वास को प्रदर्शित करता है। श्री सिंधिया ने 7 नई सेवाओं का शुभारंभ किया, जिसमें स्पैम मुक्त नेटवर्क, राष्ट्रीय वाईफाई रोमिंग, इंट्रानेट फाइबर टीवी, एनी टाइम सिम कियोस्क, डायरेक्ट टू डिवाइस सेवा, सार्वजनिक सुरक्षा और आपदा राहत तथा खदानों में पहला निजी 5G नेटवर्क शामिल हैं। राजधानी दिल्ली में संस्कृति और एकता का प्रतीक फूल वालों की सैर उत्सव का शुभारंभ हो चुका है। एक रिपोर्ट।
आयोजकों द्वारा मुख्यमंत्री सुश्री आतिशी को उत्सव का प्रतीक पारंपरिक पंखा भेंट कर 7 दिवसीय इस उत्सव की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री आतिशी ने इस अवसर पर कहा कि फूल वालों की सैर सिर्फ 7 दिन का उत्सव नहीं है बल्कि हमारी गंगा जमुनी परंपरा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में देश के हर हिस्से के लोग, हर धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं और इस प्रकार के उत्सव सभी को साथ लाने का काम करते हैं। मुख्यमंत्री ने फूल वालों की सैर की शुरुआत के मौके पर शहर वासियों को बधाई दी। अक्षित की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए वैष्णवी।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय की संस्कृति परिषद द्वारा आयोजित दो दिवसीय अंतर महाविद्यालय ललित कला प्रतियोगिता का आज समापन हो गया। इस कार्यक्रम में दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न महाविद्यालयों के विद्यार्थियों ने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। एक रिपोर्ट।
प्रतियोगिता के समापन पर दिल्ली विश्वविद्यालय की संस्कृति परिषद की संचालन समिति के उपाध्यक्ष प्रोफेसर परमजीत सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। प्रतियोगिता के पहले दिन प्रतिभागियों ने मेहंदी, पोस्टर मेकिंग, स्पॉट फोटोग्राफी, कोलाज और रंगोली जैसी गतिविधियों में भाग लिया। वहीं दूसरे दिन की शुरुआत और भी रोमांचक प्रतियोगिताओं के साथ हुई, जिनमें स्पॉट पेंटिंग और कार्टूनिंग प्रतियोगिताएं शामिल थी। इन प्रतियोगिताओं के बाद हंसराज कॉलेज में पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। अक्षित की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए प्रशांत कुमार।
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के जैव चिकित्सा केंद्र ने स्वास्थ्य देखभाल प्रौद्योगिकी में विशेष MSc शोध की शुरुआत की। ये पाठ्यक्रम अगले वर्ष जनवरी से शुरू किया जाएगा। इस पाठ्यक्रम को विशेष रूप से चिकित्सा और क्लिनिकल पेशेवरों के लिए तैयार किया गया है। भारतीय नौसेना के नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण सेमिनार का तीसरा संस्करण स्वावलंबन 2024 इस महीने के 28 और 29 तारीख को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि स्वावलंबन 2024 का उद्देश्य भारतीय नौसेना के नवाचार और स्वदेशीकरण प्रयासों को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि सेमिनार के दौरान उद्योग, शिक्षा जगत, स्टार्टअप और विभिन्न हितधारक चुनौतियों का समाधान खोजने के लिए सहयोग करेंगे। दिल्ली के स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर में दीपावली, गोवर्धन पूजा और अन्नकूट उत्सव के भव्य आयोजन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। संस्था के वरिष्ठ संत स्वयं प्रकाश दास के सानिध्य में इस वर्ष दीपोत्सव मनाया जाएगा। स्वामी नारायण संस्था ने बताया कि इस वर्ष का दीपावली उत्सव 31 अक्टूबर को बह पूजन के साथ सवेरे 10 बजे से शुरू होगा, जिसके बाद 2 नवंबर को गोवर्धन पूजा और अन्नकूट दर्शन का आयोजन किया जाएगा। इसमें श्रद्धालु बड़ी संख्या में भाग लेंगे। इस अवसर पर दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों से हजारों श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। देश आज स्वतंत्रता सेनानी और काकोरी ट्रेन एक्शन के वीर योद्धा अशफाक उल्ला खान की जयंती पर श्रद्धांजलि दे रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्वतंत्रता सेनानी अशफाक उल्ला खान की जयंती पर श्रद्धांजलि देते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अशफाक उल्ला खान हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे, जिन्होंने काकोरी ट्रेन एक्शन के जरिए अंग्रेजों में डर पैदा किया था। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने भी स्वतंत्रता सेनानी अशफाक उल्ला खान को श्रद्धांजलि दी है। राजधानी दिल्ली में आज कई क्षेत्रों में मौसम साफ रहा और दिनभर धूप खिली रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री अधिक 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री अधिक 20 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली और आसपास के इलाकों में मौसम साफ रहने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैप 2 लागू किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 प्रदान किए। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में BSNL के नए प्रतीक चिन्ह और 7 नई सेवाओं का उद्घाटन किया। दिल्ली विश्वविद्यालय की संस्कृति परिषद की अंतर महाविद्यालय ललित कला प्रतियोगिता संपन्न और दिल्ली के स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर में दीपावली, गोवर्धन पूजा और अन्नकूट उत्सव के आयोजन की तैयारियां शुरू हुई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।